और कुछ पी ही नहीं पाया, तुरंत कहने लगा नहीं भाई मुझसे नहीं नहीं होता, कृपा करके बंद करो पिलाना। फिर आदमी ने कहा ठीक है कोड़े खाओ, बोला ठीक है। तो दनादन एक दो तीन चार दस कोड़े हुए, पंद्रह कोड़े हुए, चिल्लाने लगा अरे बस करो मुझसे नहीं होता भाई, कोड़े सहने होते। तो निकालो 50,000 रूपये, बोला भाई ये ले लो 50,000 रूपये, बहुत हो गया। अर्थात एक करना था, अंधो गप्पा तीनों कर बैठा, पहले ही वो स्वीकार कर लेता तो इतनी समस्या नहीं होती। अर्थात इस जगत में कोई भी प्रायश्चित करने जाओ वह संतोषजनक उपाय नहीं है, और अंततोगत्वा अनेक प्रकार से हमको भुगतना पड़ता है, क्योंकि जगत का नियम ही है कि जितने भी यहाँ के नियम हैं सभी पेचीदार हैं, संतोषजनक समाधान नहीं प्रदान कर सकते। इसलिए हरिनाम के अंदर इतनी शक्ति है पाप निर्धारण हरे, कि हमारे सभी पापों का वो प्रायश्चित करने में, क्षय करने में सफल हो सकता है। प्रभु रामचंद्र जी एक बार विचार कर रहे थे कि मेरे नाम की इतनी शक्ति क्या है कि जितने वानर सेना है वह सब पत्थर पर राम नाम लिखकर फेंक रहे हैं और ये पत्थर इस पर तैर रहा है। तो प्रभु रामचंद्र जी रात के अंधकार में आए, रात के अंधकार में समुद्र के तट पर आकर आपने जो एक पत्थर लिया और विचार किया कि मैं तो स्वयं रामचंद्र जी हूं, मुझे नाम लिखने की क्या आवश्यकता, तो पत्थर उठा के फेंका, और जैसे पत्थर उठा के फेंका पत्थर डूब गया। और रामचंद्र जी विचार करने लगे ये क्या हुआ, इतनी वानर सेना है मेरा नाम लिखकर इसको तैरा रही है और मैं स्वयं राम फेंक रहा हूं डूब जा रहा है। और लज्जित होकर यहां वहां देखने लगे, तब तक हनुमान जी पीछे से आ गए और हंसने लगे भगवान सब देख लिया मैंने, डूब गया ना पत्थर। तो रामचंद्र जी का हाँ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या चल रहा है। हनुमान जी ने कहा प्रभो वास्तव में इस जगत के लोगों के हृदय को तैराने के लिए, उनके सभी पापों को ऊपर लाने के लिए आपके नाम की ही ये शक्ति है, ये नाम का ही कर्तव्य है कि नाम लेने पर जितने हृदय के पाप हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं, हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और हृदय स्वच्छ हो जाता है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए और इससे श्रेष्ठ कृत निर्वेश या प्रायश्चित दूसरा कोई नहीं। इसलिए नाम का पहला प्रभाव है कि यह सम प्रायश्चित है। दूसरा न केवल यह परिपूर्ण प्रायश्चित है लेकिन साथ साथ वर्णन आता है कि भक्ति उदय, भक्ति का उदय होता है, नाम लेने से भक्ति का उदय होता है। और वर्णन करते हैं विष्णुदूत न निष्कृत उदितैर ब्रह्मवादिभिर तथा विशुद्ध अगवान व्रतादिभिर। भले ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार अनेक प्रकार के व्रत हम रखें और प्रायश्चित करने का प्रयास करें लेकिन हृदय न निष्कृतैर उदितैर ऐसे निर्धारित कर्तव्यों के पालन करने से उस प्रमाण में शुद्ध नहीं होता जितना नाम लेने पर। क्यों? क्योंकि नाम लेने पर न केवल चित्त शुद्ध होता है पापों से लेकिन साथ साथ यथा हरे नाम पदेर उदाहृतैर, हरि नाम का पद, हरि नाम लेने से, हरि नाम के उच्चारण करने से क्या प्रभाव पड़ता है वर्णन करते हैं। तद उत्तम श्लोक गुणो कलंभकम्, भगवान श्रीकृष्ण के नाम गुण लीला इत्यादि के प्रति हमारा चित्त आकर्षित होता है, कृष्ण का स्मरण होता है, कृष्ण की भक्ति में हमारा चित्त आकर्षित होता है। अर्थात पाप का नाश तो होता ही है, प्रायश्चित तो होता ही है लेकिन साथ साथ भक्ति का उदय होता है। लेकिन केवल हम प्रायश्चित करते रहें, धर्मशास्त्र में जैसे निर्धारित कर्तव्य है वो पालन करते रहें तो भक्ति के प्रति रुचि जागृत नहीं होती, कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। तो केवल भगवान नाम को पुकारने से ही कृष्ण के चित्त को हम आकर्षित कर सकते हैं, कृष्ण को हम तभी आकर्षित कर सकते हैं जब हम नाम लें। इसलिए वर्णन आता है रा शब्द उच्चारण पश्चात पीतो भवति माधव, धा शब्द उच्चारण पश्चात धावते रस संभ्रम। जब हम रा शब्द लेते हैं, रा इस तरह कहते ही कृष्ण का हृदय मचलता है, प्रसन्नचित हो जाते हैं, और जब कोई व्यक्ति धा कहता है रा धा, तो धा कहते ही कृष्ण उस व्यक्ति के पीछे पीछे पागल होकर भागने लगते हैं। ये शास्त्र का प्रमाण है। आप पीछे मुड़कर देखो और देखो कि कृष्ण तो नहीं आ रहे, और आपको लगता है क्या ये बात सही है? शास्त्र की बात है। राधा रानी का नाम लेने से, हरि नाम लेने से जब हम कहते हैं हरे, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण आकर्षित होते हैं। वह अपने धाम में बैठे बैठे बुरी तरह से विचलित हो जाते हैं, अपने भक्त की रक्षा करना चाहते हैं। एक बार ऐसे ही एक भक्त थे, एक व्यक्ति थे, पूरी तरह अपने भौतिक कार्य में लीन थे। नारद मुनि इनके पास आए। नारद मुनि कहने लगे आपको राम का नाम लेना चाहिए। उसने कहा नारद मुनि जी, सुबह से लेकर रात तक मेरी दिनचर्या कितनी व्यस्त है देख लीजिए, मेरा टाइम टेबल ये है। तो नारद मुनि ने कहा आपकी दिनचर्या तो पूरी व्यस्त है, लेकिन एक समय है जब आप राम नाम फिर भी ले सकते हो, जब आप शौचालय में हो तब। तो शौचालय का समय तो इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कम से कम शौचालय में हो तब तो राम नाम लो। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है आप कहते तो वही सही। तो शौचालय में जब रहता था तो वो राम नाम लेते थे, राम 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 राम। उस समय एक दिन हनुमान जी ऊपर से भ्रमण कर रहे थे, और हनुमान जी ने सुना मेरे प्रभु का नाम तो ले रहा है, कौन है वो व्यक्ति, कहां पूजा कर रहा है वो? और ऐसा विचार करके हनुमान जी नीचे उतरे, और नीचे उतर के घर में घूमने लगे, भ्रमण करने लगे। देखे कि राम का नाम तो आ रहा है, लेकिन पूजा घर खाली है और सारे कमरे खाली हैं, तो व्यक्ति दिख नहीं रहा। तब देखा कि शौचालय से नाम आ रहा है। हनुमान जी को क्रोध आया, ये क्या, मेरे प्रभु राम का पवित्र नाम ऐसे स्थान से लिया जा रहा है। हनुमान जी बाहर खड़े हो गए तैयार होकर, निकलने दो इसको बाहर, अभी दिखाता हूं नालायक। और जैसे ही वो व्यक्ति बाहर आए, राम 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 राम, तड़ाक एक तमाचा दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी के दाएं हाथ का एक गरम गरम खाया तो बेचारे विचलित हो गए, और तुमने तो क्या अपराध किया है, मैंने राम का नाम लेने के लिए तमाचा क्यों मार रहे हो? हनुमान जी का मूर्ख, भगवान नाम इतना पवित्र है, ऐसे अपवित्र स्थान में आप नाम ले रहे हो, यह अनुचित है, आप नाम का अपमान कर रहे हो। और ऐसा कहकर हनुमान जी चले गए और सीधे अयोध्यापुरी गए प्रभु रामचंद्र जी के समक्ष। प्रभु रामचंद्र जी उस समय ऐसे बैठे हुए थे, गले अपने गाल पर हाथ रखकर, और हनुमान जी कहने लगे पता है प्रभु अभी क्या हुआ? और रामचंद्र जी कहा हाँ मुझे सब कुछ पता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप इस तरह क्यों बैठे हो? और प्रभु रामचंद्र जी ने अपने हाथ हटाया और यहां पर पंजे की एक निशान थी, पूरा पंजा यहां पर लगा हुआ था। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये पंजा तो पहचाना हुआ लग रहा है। रामचंद्र जी कहा तुम्हारा ही है ये। तो हनुमान जी बोले ऐसे कैसे, मैंने तो आपको इस प्रकार अपराध नहीं किया। रामचंद्र जी बोले वो मेरा भक्त था, मेरा नाम ले रहा था, राम का नाम ले रहा था और मेरा चित्त आकर्षित हो रहा था, मैं उसको ध्यानपूर्वक सुन रहा था, अचानक धड़ाम एक झापर गिरा, ये लगता है तुम्हारा ही काम है। ऐसा क्यों किया तुमने हनुमान? हनुमान जी दंडवत प्रणाम की क्षमा याचना करने लगे, प्रभु क्षमा करें लेकिन मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और रामचंद्र जी कहना हनुमान जी जब कोई मेरा नाम लेता है चाहे कैसी परिस्थिति में क्यों न हो, हो सकता है उसकी अनेक ऐसी मजबूरियां हो, लेकिन जब कोई मेरा नाम लेता है वो वास्तव में मेरे चित्त को आकर्षित कर लेता है, मेरा ध्यान खींच लेता है और मैं उस भक्त का स्मरण करने लगता हूं। अर्थात न केवल हमारे पापों का क्षय होता है लेकिन साथ साथ भक्तियोदय, भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है क्योंकि भगवान का चित्त हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। तीसरा प्रभाव हरिनाम का है संशुद्धि, संप्रायश्चित भक्तियोदय, और तीसरा है संशुद्धि, पूरी तरह से चित्त का शुद्धिकरण। और वर्णन आता है नैकांतिकम तद ही कृते निष्कृते मन पुनर्धावति चेत असत्पथे। नैकांतिकम, यदि हम अनेक विविध प्रकार के प्रायश्चित करते रहे कृते निष्कृते, भले ही हम ठीक प्रकार से सारे यज्ञ अनुष्ठान प्रायश्चित इत्यादि करें भी, तो यह कोई गारंटी नहीं कि हमारा मन पूरा शुद्ध हो जाएगा। मन पुनर्धावति चेत असत्पथे, ये मन फिर से भौतिक कार्यों के पथ पर लग जाता है और मन भौतिक कार्यों में लीन हो जाता है, ये वर्णन आ रहा है यहां पर नाम लेने का प्रभाव। जब तक नाम नहीं लेंगे तब तक मन पाप के बीजों से मुक्त नहीं होता। कल हमने वर्णन किया किस प्रकार कूट बीज पाप और अप्रारब्ध ये सारे प्रायश्चित केवल पाप को ही काटते हैं, लेकिन हृदय के भीतर जो पाप करने की वृत्ति है, जो बीज है, उस बीज का विनाश नहीं करती। केवल नाम लेने से ही पाप करने की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, जो बीज है, उसका विनाश होता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं नैकांतिकम तद ही कृते निष्कृते मन पुनर्धावति चेत असत थे। तो जब हम इस प्रकार प्रायश्चित नहीं करेंगे हरि नाम लेकर, तो फिर भौतिक कार्य में लीन होने की संभावना है। इसलिए तत्कर्म निर्हारम अभीप्सताम हरे गुणानुवादाम खल सत्य भावना। यत कर्म निर्हारम अभीप्सताम, जो इस प्रकार कर्म के बंधन से पापों से पूर्ण रूपेण मुक्ति चाहता है, चित्त का स्पष्ट रूपेण शुद्धिकरण चाहता है, अभीप्सताम हरेर गुणानुवादा, उसे कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, कृष्ण कथा में भाग लेना चाहिए, कृष्ण कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। गुणानुवादा खल सत्व भावना, और ऐसे कृष्ण के संपर्क में स्थित होने पर सत्व भावना, हम शुद्ध सत्व के स्तर पर स्थित हो सकते हैं। चित्त के भीतर जो पाप करने के बीज हैं, वह पूरी तरह जल कर राख हो सकते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं। वर्णन आता है रामायण में कि जब सीता का हरण हो गया था और रावण बारंबार सीता देवी का हरण करने के पश्चात उसका भोग करने का प्रयास कर रहा था, सीता देवी को मनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सीता देवी उनकी बात नहीं मान रही थी, बलपूर्वक उसे अपने अधिकार में रख लिया था और भोग करने का वह प्रयास कर रहा था, लेकिन सीता देवी मान नहीं रही थी। और क्योंकि रावण पर श्राप था कि वह बलपूर्वक किसी के ऊपर अपना अत्याचार या अपना जोर नहीं जता सकता, इसलिए रावण सीता देवी को प्रेम की बातें कह के फुसलाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बड़ा हताश हो गया, निराश हो गया, क्योंकि भरपूर प्रयास और प्रयत्न करने पर भी सीता देवी उनकी बातों में नहीं आ रही थी। ऐसी परिस्थिति में वह दुखी होकर हताश होकर बैठे थे। कुंभकर्ण रावण के समक्ष आया। रावण कुंभकर्ण को कहने लगा, कुंभकर्ण भाई, बड़ी समस्या है, सीता को मनाने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मानती ही नहीं। कुंभकर्ण ने कहा, भैया ऐसी कौन सी बड़ी आपत्ति है? अरे भाई, आप तो बहुत बड़े योगी हो, जब चाहो जैसा चाहो अपना रूप परिवर्तित कर सकते हो। अरे क्यों नहीं आप अपना रूप परिवर्तित करके एक राम का ही रूप धारण करो, क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, आपके अंदर वह शक्ति है कि जैसा रूप आप वैसा ढाल सकते हो, तो क्यों नहीं अपने आप को राम के रूप में परिवर्तित कर दो और सीता देवी के समक्ष आ जाओ, तो सीता देवी को लगेगा रामचंद्र आ गए, तुरंत वह स्वीकार कर लेगी, फिर आप भोग कर लेना। और रावण कहने लगा, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, तुमको क्या लगता है ये आइडिया मेरे मन में नहीं आया? लेकिन राम का रूप धारण करना है तो पहले उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ता है और उसके रूप का ध्यान लगाना पड़ता है, और राम का रूप धारण करने के लिए जब मैं राम का नाम लेने लगता हूं और उसका ध्यान लगाने लगता हूं, तो सीता मां की तरह लगती है, सीता देवी मां की तरह दिखती है मुझे, तो फिर इस प्रकार नाम लेकर क्या लाभ? इसलिए वह नाम लेना ही छोड़ दिया मैं। वो तो रावण था, उसने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी इस उदाहरण से हम ये शिक्षा लेते हैं कि जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। अर्थात जब राम का नाम लो तो काम वासना से मुक्त हो जाएंगे, अन्यथा अन्य लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, आप लोग राम नाम लेते हो तो काम धंधा छोड़ देते हो। इसका अर्थ ये नहीं, हृदय के भीतर जो काम वासना है उससे पूरी तरह मुक्ति प्राप्त हो जाती है और राम के प्रति चित्त आकर्षित हो जाता है, कृष्ण के प्रति चित्त आकर्षित हो जाता है। ये भगवान नाम का एक सर्वोच्च लक्षण है। इसलिए वर्णन आ रहा है सम शुद्धि, चित्त के भीतर से पूरी तरह शुद्धिकरण होता है। इसलिए यदि कोई बीमारी हो तो इस बीमारी को दूर करने के दो मार्ग हैं। एक तो केवल जो बाहरी लक्षण हो उस लक्षण को दूर करो, और दूसरा उस बीमारी उस व्याधि का पूरा उन्मूलन करो अंदर से भीतर से। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर बहुत समस्या है, मुझे सर्दी हो गई है, सर्दी के लिए कोई दवा दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, ठंडा ठंडा बिल्कुल बर्फ वाला जल पी जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा, डॉक्टर क्या बात करो, मैंने कहा सर्दी हुई है, सर्दी, गर्मी नहीं, सर्दी, सर्दी हुई है। डॉक्टर ने कहा, सुन रहा हूं, ठंडा ठंडा जल पी जाओ, बर्फ वाला, खूब बर्फ डालो और पी जाओ। बोला, क्या बात कर रहे हो डॉक्टर, इससे क्या होगा? डॉक्टर ने कहा, इससे निमोनिया होगा, और निमोनिया की दवा मेरे पास है, सर्दी की दवा नहीं है, इसलिए एक बार निमोनिया हो जाए फिर इसकी दवा दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अर्थात भौतिक जगत में किस वस्तु का निवारण करने के लिए कोई उपाय नहीं होते, केवल ऊपर ऊपर के सब कार्य होते हैं। दूसरा एक व्यक्ति डॉक्टर के पास कह रहे, डॉक्टर समस्या है, क्या बात है, मुझे पसीना ही नहीं आता। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा बिल देख लो, अपने आप पसीना आ जाएगा। अर्थात जो भी बाहर के लक्षण है उन लक्षणों को दूर करने के लिए चाहे कुछ तथाकथित उपाय हो, लेकिन अंदर से जो वास्तविक रोग निवारण है वह केवल नाम उच्चारण से ही संभव है। और ये बाकी अन्य जितने भी उपाय साधन शास्त्र में है, ये वैसे जैसे बाहर से कुछ दवा देकर उन लक्षणों को दबा देना। इसीलिए समशुद्धि अर्थात सर्वश्रेष्ठ शुद्धि के उपाय हरिनाम में ही विद्यमान है। और चौथा इसका वर्णन आ रहा है, सर्वभाव प्रभाव। तो ये चार लक्षण अभी हमने चर्चा किए, और इन चार लक्षणों को चर्चा करने के बाद अब हम कुछ उत्साह के साथ उच्च स्वर में इसका प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, और उसके पश्चात फिर हम और जो चार लक्षण हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सभी ध्यान पूर्वक उच्च स्वर में ध्यान केंद्रित करके जोर जोर से तालियां बजाते हुए अब आप हमारे साथ साथ कीर्तन कीजिए। सब बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
کرشنا کرشنا ہرے 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 راما ہرے راما رام رام ہرے 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 کرشنا ہری بول کرشنا کرشنا ہرے ہرے Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
किसी भी भाव में इस नाम का उच्चारण किया जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए
సాంకేత్యం పారిహాస్యం వా స్తోభనం హేళనం వా వైకుంఠ నామ గ్రహణం అశేషాగహరం విదు.
यदि कभी संकेत करते हुए किसी का नाम लिया जाए, संकेत करते हुए भगवान का नाम लिया जाए, पारिहास्यम वा परिहास करते हुए भगवान का नाम लिया जाए, स्तोभनम अर्थात संगीत में मनोरंजन के रूप में भगवान का नाम लिया जाए, हेलनम वा या उपेक्षा पूर्ण भगवान का नाम लिया जाए,
वैकुंठ नाम ग्रहणन अशेष अगहरम विदु,
क्योंकि ये नाम वैकुंठ से आया है, क्योंकि नाम वास्तव में वैकुंठ से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हृदय के भीतर करोड़ों करोड़ों जितने पाप हैं उन सभी का विनाश निश्चित है. भले ही कोई उपेक्षा पूर्ण नाम ले या संगीत में मनोरंजन के रूप में, अर्थात भगवान नाम की बड़ी शक्ति है. इसलिए यह वर्णन आता है कि चांद काजी जब चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन पर आक्रमण करने जा रहे थे, उस समय चांद काजी के कुछ सैनिक गण महाप्रभु के यहां जो कीर्तन चल रहा था और जो भक्तगण कर रहे थे नगर कीर्तन, उसको देखकर वापस आकर कहने लगे कि बहुत बड़ा कीर्तन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं हरि 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 हरि, कोई कह रहा है राम राम कृष्ण कृष्ण, ये बहुत भयंकर कीर्तन हो रहा है, इसमें हरि का नाम, इसमें कृष्ण का नाम, इसमें राम का नाम उच्च स्वर में लिया जा रहा है, सभी कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, हरि हरि कह रहे हैं. चांद काजी ने कह रहे वो लोग कह रहे ठीक है, तुम लोग क्यों कह रहे हो भाई, तुमको किसने कहना है, तुम क्यों जोर जोर से कह रहे हो बार बार. वो क्या करे पता नहीं, कुछ तो हो गया, जब से वो नाम अपने पकड़ में आया है बारम्बार मुख से उच्चारण कर रहे हैं, बंद ही नहीं होता. अर्थात किसी न किसी प्रकार से यदि नाम का प्रभाव पड़ जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा. एक सत्य घटना बताता हूं. पुणे में एक कंपनी में जब राधेश्याम प्रभु जो कि पुणे के प्रेसिडेंट हैं, मंदिर ज्वाइन होने से पूर्व जब कंपनी में थे माथेरन फ्लैट पुणे में, उस समय दो व्यक्ति उनके कंपनी में कुछ बातें कर रहे थे. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मजाक में आके कह रहा था जय श्री राम जय श्री राम, क्योंकि उस समय राम जन्मभूमि का किस्सा चल रहा था तो लोग आपस में एक दूसरे को मिलकर तो मजाक मजाक में गुड मॉर्निंग के बदले जय श्री राम कहते. तो ऐसे आके मजाक में सुबह सुबह उसने कह दिया जय श्री राम, तो उसने बोला अरे जय श्री राम कैसे हो जय श्री राम. तो यहां प्रभु जी विचार कर रहे थे कि लगता है राम के बहुत बड़े भक्त हैं ये लोग, तो उनके पास जाकर बोलने लगे अच्छा आप लोग राम के भक्त हैं, आइए मैं आपको कुछ किताब देता हूं. बोले अरे राम राम के कोई भक्त नहीं, हम तो ऐसे मजाक में कह रहे थे. बोले भले आप लोग मजाक में कह रहे हो, हम तो बुक सीरियसली देंगे आपको, लीजिए ये बुक करके बुक पकड़ा दिया. और उसके बाद कहने लगे कि ये बुक पढ़िए आप और आपको अच्छा लगेगा. और इस प्रकार से उसमें से एक व्यक्ति वह बुक पढ़ने लगा और धीरे धीरे करके उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा और कुछ ही दिनों के पश्चात वह प्रभु जी के साथ में रहने लगा. और फिर जब मैं उस समय पुणे में था तो हम सब एक साथ रहते थे और कुछ समय के पश्चात वही व्यक्ति अब मंदिर में ब्रह्मचारी बन गया है, उसका नाम है सुदामा प्रभु. और वो कहता है उस दिन का मजाक मुझे बहुत महंगा पड़ा, जय श्री राम सुनाया लेकिन बहुत मजाक में, लेकिन जैसे यहां वर्णन आ रहा है स्तोभम संगीत में मनोरंजन में भी यदि कुछ कहो नाम तो उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा कोई भरोसा नहीं, इसलिए भगवान का नाम बहुत भयंकर है, हैंडल विथ केयर. इसलिए वर्णन आ रहा है कि कई बार लोग हरे कृष्ण आंदोलन के देख के मजाक मजाक में जब भक्तों को जाते हुए देखते हैं हाँ हरे कृष्ण हरे राम, ये तो वही वाले हैं हरे कृष्ण हरे राम, और वो गाना गाने लगते हैं वही वाला, आप सब जानते हो कौन सा. तो वास्तव में एक बार श्री प्रभुपाद को भक्त लोग आके बोलने लगे कि हम लोग जब भी कीर्तन में जाते हैं लोग आके मजाक करते हैं वही वाला गाना गाते हैं और कहते दम मारो दम दम मारो दम. प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी. कुछ दिनों के बाद कुछ सालों के पश्चात लोग दम मार मार के परेशान होकर मर जाएंगे, दम मारो दम भूल जाएंगे, फिर बच जाएगा हरे कृष्ण हरे राम. इसलिए चिंता मत करो, अंततोगत्व उसकी जीत होगी, भगवान का नाम ही बचा रहेगा. तो इसलिए स्तोभनम अर्थात संगीत में मनोरंजन के रूप में भी नाम लिया जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कोई इस प्रकार हास्यास्पद रूप से कहे भी तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको और प्रोत्साहन देना चाहिए, कोई बात नहीं आप गाइए। तो राम का नाम किसी भी प्रकार लिया जाए तो उसका असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। भक्त लोग हरिनाम कीर्तन करते हुए सैन फ्रांसिस्को में जाते थे तो जब कीर्तन पार्टी वहां पे बाजार से निकलती थी तो एक दुकान था, एक व्यक्ति था, वो टमाटर बेचता था और उसको इतना क्रोध आता था भक्तों के इस कीर्तन को, हरिनाम को देखकर। जैसे वो हरिनाम पार्टी सामने से जाता वो दुकान में सड़े सड़े टमाटर निकाल के रखता था और जोर से हरे कृष्ण हाँ मारता था, जोर से सड़े हुए टमाटर हरे कृष्ण मारो, हरे कृष्ण मारो, हरे कृष्ण को देखकर क्रोध आता था और गुस्से में वो टमाटर फेंकता था लेकिन फेंकते हुए हरे कृष्ण वाले बोल के मारता था। कुछ समय के पश्चात एक भक्त उनके पास आए और वो टमाटर मारे जा रहा था, भक्त टमाटर खा रहा था लेकिन फिर भी वो आया पास में और उसको प्रसाद दिया। तो उसने इतना सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद कभी स्वीकार नहीं किया था, प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात उसको लगा ये तो बहुत बढ़िया है भाई, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, टमाटर मार रहा हूं फिर भी ये मुझे प्रसाद दे रहे हैं। तो ऐसा विचार किया और कुछ समय के बाद वह टमाटर मारना बंद कर दिया, गंदे टमाटर मारना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन होने लगा और कुछ ही महीनों में भक्तों का हरिनाम, भक्तों का जो रथ यात्रा हुआ वहां पर सैन फ्रांसिस्को में, और उस रथ यात्रा के लिए जो भी फीस्ट के लिए टमाटर था उसने पूरा स्पॉन्सर किया। अर्थात हरिनाम संकीर्तन के संपर्क में सड़े टमाटर के माध्यम से भी आओ लेकिन फिर भी भगवान केवल देखते हैं कुछ तो दे रहा है, ये कुछ तो भोग लगा रहा है, चलो कोई बात नहीं उसको स्वीकार कर लो, आपके हृदय में जो कचरा है जो सड़ा हुआ माल है उसको निकाल देते भगवान। यह है हरिनाम की शक्ति। इसलिए वैकुंठ नामक रहना ये इम्पोर्टेड माल है, लोग इम्पोर्टेड माल से बहुत आकर्षित होते हैं, लोग कहते हैं देसी है कि बाहर का, बाहर का यार फिर तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा, देसी है ठीक है चलेगा, बहुत देखा है। तो ये नाम कहाँ का है, देसी है क्या, नहीं वैकुंठ का है, इस देश का नहीं है, वैकुंठ से आया है, इम्पोर्ट किया हुआ है, मेड इन वैकुंठ है, मेड इन गोलोक। इसलिए प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करना चाहिए और नाम लेना चाहिए, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। उसके पश्चात सर्व घाव प्रभाव, एक हो गया सर्व घाव प्रभाव और उसके बाद है सर्व घाव प्रभाव, अर्थात किसी प्रकार की परिस्थिति में कोई आघात क्यों न हो। यदि व्यक्ति नाम का आश्रय लेगा तो अवश्य उसकी रक्षा होगी। प्रवर्णन आता है पतितस खलिता भगना संदष्टस तप्तागत हरिर इति अवनेशा उमानार्हति यातना। चलते हो यदि कोई फिसल कर गिर जाए या किसी प्रकार से उसकी हड्डियां टूट जाए या कोई सर्प डस ले या ज्वर हो जाए, किसी भी परिस्थिति में यदि मृत्यु होनी हो लेकिन केवल उस समय वो उच्च स्वर में भगवान का नाम मात्र ले तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसकी रक्षा हो जाती है। वर्णन आता है शास्त्र में दमश्री दमश्रह दमश्री दमश्रह कमले चौहरा में थी पुनः पुनः। एक ऐसे ही म्लेच्छ थे, एक यवन थे जो कि एक बार किसी वन में गए थे और वह अपने दैनिक कार्य कर रहे थे और निकट ही एक सूअर खड़ा हुआ था, सूअर जंगली सूअर, और सूअर विष्टा को देखकर आकर्षित हुआ और विष्टा को देखकर आकर्षित होकर उस व्यक्ति के तुरंत पास भागने लगा। तो जैसे उस व्यक्ति ने देखा कि सूअर आ रहा है मुझे मारने वाला है, भागने के पूर्व ही वह सूअर आकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसके दांत से उसके हृदय को भेद दिया और जैसे उसकी मृत्यु होने वाली थी वो जोर से चिल्लाने लगा हराम हराम,
गमस्ते गमस्ता तुम ले छो हरामे थी पुनः पुनः बारंबार हराम हराम कहने लगा। उक्त्वापि मुक्तिमा अपनोति किं पुनः श्रद्धया गृणन्। और उस म्लेच्छ को मुक्ति प्राप्त हो गई, हराम हराम कहने पर मुक्ति प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान ने विचार किया, ये कह रहा है हराम हराम हराम, इसलिए भले ही वो गालियां दे रहा था लेकिन केवल उसमें से जो सार तत्व था वह स्वीकार किया और उसको मुक्ति प्रदान कर दी। उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किं पुनर् श्रद्धया गृणन्। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम गालियां दें, इसका अर्थ ये है कि हम अधिक श्रद्धा के साथ जब नाम लेंगे तो विचार कीजिए कितना उसका प्रभाव पड़ेगा। एक और दूसरी कथा आती है नरसिंह पुराण में। एक ब्राह्मण हृष्ट पुष्ट ब्राह्मण नदी के भीतर गायत्री कर रहे थे, उनका आधा देह जल के नीचे निमग्न था और जब वो गायत्री कर रहे थे तो तट पर, तट के बिल्कुल अंदर थे पानी में और तट के बाहर जंगल के झाड़ियों के पीछे एक शेर उन्हें देख रहा था और दोपहर का समय था, शेर को भी भूख लगी थी। ब्राह्मण भी मोटे ताजे थे, शेर को लगा चलो आज फीस्ट मिल गया हमको पानी के अंदर। तो शेर धीरे धीरे पास आने लगा, ब्राह्मण आंख बंद करके गायत्री कर रहा था, कुछ पता नहीं कि सामने से खतरा आ रहा है। और शेर भी धीरे धीरे दबे पांव पास आए और शेर को पता नहीं दूर वृक्ष के ऊपर झाड़ियों में एक शिकारी बैठा था और धनुष पर बाण लगाकर रेडी था। और जैसे ही अचानक शेर यहां से छलांग लगाता है ब्राह्मण के ऊपर कूदने और यहां से बाण छूटता है, और कभी ब्राह्मण को भी लगता है कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कभी कभी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हम आंख खोल लेते हैं। तो ब्राह्मण आंख खोल लिया, पता लगा सरप्राइज गिफ्ट था उनके लिए, ऊपर से एक शेर आकर कूद रहा है उनके ऊपर। घबरा गया, जोर से चिल्लाने लगा हरी 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 हरी। तो जैसे हरी का नाम लेने लगा तब तक बाण आकर उस शेर को लग गया और वह शेर नीचे पानी में थप करके गिर गया, शेर मुक्त हो गया, शेर को मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय शेर ने हरि का नाम सुना। भले वो मारने के लिए चला था लेकिन क्योंकि ब्राह्मण के मुख से हरि का नाम सुना, मरते मरते शेर को मुक्ति प्राप्त हो गई। अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में नाम की बड़ी महिमा है। किसी भी भाव में किसी भी प्रकार से कैसे भी आघात हम पर हो, यदि नाम लेंगे तो अवश्य ही उसका प्रभाव पड़ेगा। हरे की अवनेशा पुमान नारहति यातनाह। और उसके पश्चात वर्णन आता है कि हरिनाम के अंदर इतनी शक्ति है कि सर्व पाप प्रणाश, हमारे प्रत्येक पापों का विनाश कर सकती है। गुरु नाम च लघु नाम च गुरुनी च लघुनी च प्रायश्चितानि पापानां यत्वदुक्ता महर्षिभिः। बड़े बड़े पापों का क्षय, छोटे छोटे पापों का क्षय सभी हरिनाम के माध्यम से संभव है। यदि हर प्रकार से हम नाम का ही आश्रय लें, गुरु हो या लघु हो, बड़े हो या छोटे हो, हर प्रकार के पापों का नाश हरिनाम से संभव है। इसलिए सर्व पाप प्रणाश। और नाम की महिमा का वर्णन आता है कि नाम अच्युत है, इनफेलेबल। अर्थात जो हम नाम लेंगे उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा और हृदय के भीतर जितने भी पाप हैं वो अवश्य ही नष्ट होंगे। जैसे अज्ञानागत वाज्ञाना उत्तम श्लोक नाम यत। उत्तम श्लोक का यदि नाम हम जानकर या अज्ञान में लें तो भी संकीर्तनम अधम पुंसो दहेत एधो यथानला। जिस प्रकार दावाग्नि के प्रभाव से सब कुछ जल जाता है उसी प्रकार हरिनाम की अग्नि में हमारे सारे पाप जलकर राख हो जाएंगे। इसलिए हरिनाम की बड़ी शक्ति है, बड़ा प्रभाव है, प्रत्येक परिस्थिति में इसका प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ जो आठवां और अंतिम गुण नाम का बता रहे हैं वो ये कि वह स्वतो शक्तिशाली है, स्वतो नाशक है। अर्थात भले इसके विषय में ज्ञान हो न हो जिस प्रकार हम किसी दवा या औषधि को स्वीकार करते हैं और कोई जानता हो न हो कि औषधि कितना शक्तिशाली है, औषधि का प्रभाव पड़ता है। इसलिए वर्णन आता है अज्ञान तो आत्मगुणम कोरियन मंत्रो की उदाहरकम। यदि आप हरिनाम लोगे तो भले जानकारी हो न हो, हृदय और चित्त शुद्ध हो ही जाएगा। इसलिए इसका ज्वलंत उदाहरण है नारद मुनि किस प्रकार वाल्मीकि जी को कह रहे थे। वह पहले इतने बड़े शिकारी थे, इतने बड़े डकैत थे कि राम का नाम मुख पर नहीं ले पा रहे थे। इसलिए उनको कह दिया मरा कहो मरा, तो कहने लगे मरा 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 राम राम राम। इस प्रकार राम का नाम लेते लेते ऐसे उच्च पद को वो प्राप्त कर गए। नारद मुनि की कृपा से वह राम नाम लेकर उस उच्च पद को प्राप्त कर पाए। अर्थात नाम के अंदर बड़ी शक्ति है और नाम का जिस सहाय रूप से हमें स्वीकार करना चाहिए और इसके अलावा अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं। और कोई भी व्यक्ति हमें भगवान नाम लेने के लिए प्रेरित करे, उस ओर दिशा दिखाए, अवश्य ही भगवान ऐसे व्यक्ति को अपनी पूरी पूरी श्रद्धा और कृपा देते हैं, अपना आश्रय प्रदान करते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक नाम का आश्रय लें और नाम का आश्रय लेकर ही अपने जीवन को परिवर्तित करें। तो विष्णुदूतों के इन कथनों को सुनकर यमदूत कुछ घबराते गए और यमदूत वहां से निकलकर वापस चले गए। यमदूत वापस यमपुरी चले गए और विष्णुदूतों ने देखा कि अजामिल अब अचेत अवस्था से उठ रहा है, तो विष्णुदूत भी वहां से निकल गए। और वर्णन आता है कि अजामिल उस समय अपना पश्चाताप करने लगा। और अजामिल का पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पश्चाताप में अजामिल अनेक प्रकार की अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है और हम सभी भी अपने जीवन में ऐसी ही अवस्था में स्थित है। हरिनाम का ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व हमने भी अजामिल जैसे अनेक कृत्य किए होंगे और इसलिए अजामिल के मनोरवैया को समझना बहुत आवश्यक है। अजामिल सर्वप्रथम पश्चाताप कर रहा है, रिग्रेट, अहो मे परमम कष्टम अभू अविदितात्मन येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायता आत्मना। अजामिल कह रहा है अहो, अरे मैंने कितने महान भयंकर कर्म किए, मैंने कितने महान कष्ट उठाए। क्यों? अभू अविदिता आत्मना, क्योंकि मेरी इंद्रियां नियंत्रित नहीं थी और क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियों से मैं इंद्र तृप्ति करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए बहुत परेशान था, हमेशा चिंतित रहता था। इस बात को ध्यान रखें, इंद्र तृप्ति बराबर दुख, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू सफरिंग। ये जीवन में फॉर्मूला याद रहे तो बस जीवन में दिशा बदल सकती है। जितना हम इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे उतना ही दुख और चिंता झेलना पड़ेगा। ये न विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायता आत्मना, और अपनी अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं वैश्यागमन करने लगा, उस वैश्या का संग करने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार अजामिल दुख करने लगे, पश्चाताप करने लगे। और इस प्रकार हम सभी को भी अपने जीवन में पश्चाताप करना चाहिए। और श्री प्रभुपाद कहते हैं ये पश्चाताप ही आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहली योग्यता है। मैं समझूं, मैं पतित हूं, मुझे परिवर्तन चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, अब मुझे सुधरना है, अपने जीवन को सुधारना है। इस बात को स्वीकार करें तभी हम बदल सकते हैं। यदि हम ये विचार करते रहेंगे मैं तो धार्मिक हूं, मैं तो हफ्ते में एक दिन मंदिर जाता हूं, मैं तो उपवास करता हूं, मैं दो चार अगरबत्ती घुमाता हूं, यदि ऐसा विचार करते रहेंगे तो जीवन कभी नहीं बदल सकता। और अब अजामिल दूसरे स्टेज पर आते हैं और वो है ज्ञान का। उनको इस बात का ज्ञान होता है कि वास्तव में वो जो कार्य कर रहे थे उसके परिणाम स्वरूप उनकी क्या गति होती थी। वो कहते हैं सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भृषदारुणे धर्मज्ञाकारिणो यत्र विन्दन्ति यमयातना।
अरे मैं जैसे पाप कर्म कर रहा था उस पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप मुझे तो नरक में प्रवेश करना पड़ता था। अरे नरक में मैं जाता था और यमदूतों के हाथों प्रताड़ित होता था। हाय ये मैं क्या कर रहा था। ये भी महान ज्ञान है कि भविष्य में हमारा क्या होने वाला है इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अरे लोग अंधाधुंध कार्य करते रहते हैं, कभी विचार नहीं करते कि भविष्य में क्या होने वाला है। लोग कहते हैं मैं धार्मिक हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, प्रतिदिन मैं अगरबत्ती चलाता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, लेकिन जीवन का भविष्य क्या है जानते हो क्या? वो तो उसके विषय में कुछ मालूम नहीं। मान लो कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो और लाल सिग्नल पर रुक गया और उसको पूछे कहाँ जा रहे हो भाई, वो तो मालूम नहीं मुझे। तो आप गाड़ी क्यों चला रहे हो, लेकिन लाल सिग्नल पर तो रुका हो ना, ट्रैफिक का नियम तो पालन कर रहा हूँ, ये क्या प्रश्न कर रहे हो कहाँ जा रहे हो। ये थोड़ी मेरा मतलब है, जब भी लाल सिग्नल होता है रुकता हूँ, जब हरा होता है जाता हूँ, फिर लाल होता है रुक जाता हूँ, सब नियम पालन करता हूँ। दिशा कहाँ है, लक्ष्य क्या है, वो पता नहीं, वो तुम जानो। तो वास्तव में लक्ष्य जानना चाहिए, अन्यथा तथाकथित धार्मिक कार्य करके कोई लाभ नहीं। जैसे एक साधु थे जंगल के बीचों बीच, उनका एक घोड़ा था, इसको बोलो थैंक गॉड तो जोर से भागने लगता है, और बोलो गॉड इज ग्रेट तो फटाक से रुक जाता है। मतलब धर्म के मामले में बहुत कुछ सिखाया मैंने इसको। थैंक गॉड बोलोगे तो भागेगा, और गॉड इज ग्रेट बोलेगा रुक जाएगा। तो ये तो मंत्र याद रखना, चल जाओ घोड़े पे। तो चल गए हमारे यात्री जी और बोले थैंक गॉड करके चिल्लाया, तो घोड़ा दौड़ने लगा दौड़ने लगा दौड़ने लगा। अचानक सोचा दूसरा मंत्र क्या था, अभी घोड़े को रोकना है, गति कुछ धीमी करनी है, बहुत तेज भाग रहा है, बैलेंस जा रहा है। अचानक भूल गए, अरे दूसरा मंत्र क्या है, थैंक गॉड, और जोर से भागने लगा। बोला क्या था यार वो दूसरा, थैंक गॉड और जोर से भाग रहा है, और जोर से भाग रहा है। अब इतना जोर जोर से उछल रहा है ऊपर घोड़े के, ये परेशान हो गया क्या होने वाला है। और घोड़ा भागते 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 भागते, धार्मिक है घोड़ा लेकिन भविष्य थोड़ी जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, भागते भागते बिल्कुल पर्वत के चट्टान के ऊपर आ गया और सामने बहुत बड़ी खाई, और नीचे गिरो तो सत्यानाश। और ये हमारे बेचारे ऊपर यात्री बैठकर सोच रहे अब क्या होने वाला है, थैंग और चिल्ला रहे और भागे जा रहा है घोड़ा। अचानक भगवान के दया से उनको मंत्र याद आ गया, गॉड इज ग्रेट। बस बिल्कुल 2 फुट दूरी पर घोड़ा पहुंचा, चिल्लाए गॉड इज ग्रेट, रुक गया बिल्कुल। और जैसे घोड़ा रुका इनको बहुत अच्छा लगा, बोले थैंक गॉड। तो विचार करो अब क्या होगा, बड़ी मुश्किल से घोड़ा रुका था और रुक गया तो भगवान को धन्यवाद दिया, थैंक गॉड। लेकिन घोड़े को क्या पता ये थैंक गॉड और वो थैंक गॉड में क्या अंतर है, उसको तो बस एक ही मंत्र पता था, थैंक गॉड बोले भागो, सामने क्या है नहीं है वो कुछ नहीं जानता। तो लोग बस अपने जीवन में करते रहते हैं जय जगदीश हरे, लेकिन सामने क्या होने वाला है और भविष्य में क्या होने वाला है, किस प्रकार हम जीवन जी रहे हैं, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, इस बात की कोई जानकारी नहीं। अर्थात जब तक ज्ञान न हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए केवल व्यर्थ पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ के साथ साथ हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन का भविष्य क्या है। ये एक विज्ञान है, ये एक तत्व है, इस विज्ञान को समझना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में इसको समझने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, ज्ञान के साथ आप नाम भी लें और समझें जैसा अजामिल अपने जीवन को समझ रहा है। इसलिए वर्णन आ रहा है कि ज्ञान के स्तर से ऊपर उठकर अब वह कृतज्ञता के स्तर पर आ रहा है। अजामिल विष्णुदूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कह रहा है, अथ तेक्व गता सिद्धा चत्वार चारु दर्शना। अरे वो महान सिद्ध पुरुष कहां गए, वो चार महान सुरम्य विष्णुदूत कहां गए जिनके दर्शन के मैं अभिलाषी हूं। क्यों चय नियमान बधवा पाशीर अधो भुआ, नीचे के नरक लोकों में मुझे खींचकर यमदूत ले जा रहे थे, केवल उन विष्णु दूतों की कृपा से ही मैं बच पाया हूं। कहां गए वो विष्णुदूत, कहां गए वो महान संतगण। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब भक्तों का हस्तक्षेप होता है, जब विष्णुदूत आते हैं, जब भगवान विष्णु के संदेशवाहक आते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद और उनके प्रतिनिधि, जब उनका हमारे जीवन में हस्तक्षेप होता है तो हमारे जीवन की दिशा भी कुछ बदलती है। अन्यथा हम तथाकथित पूजा पाठ करते करते कभी समझ नहीं पाते कि वास्तव में धर्म का तत्व क्या है। एक कहावत है कि चार हिंदू एक दिशा में तभी जाते हैं जब पांचवा कंधे पर होता है, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पाठ में इतना लीन होता है वो समझता नहीं कि शास्त्र का निचोड़ क्या है। तो वास्तव में यहां पर वह कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं विष्णु दूतों के लिए, क्योंकि केवल विष्णु दूतों के संग से ही अजामिल का जीवन परिवर्तित हुआ है। इसी प्रकार जो हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में आए हैं, श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए हैं, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। अरे हमारा जीवन तो वैसे कीड़े की तरह था, तुच्छ था। अरे कोई कीड़ा जो बाहर रास्ते में भटक रहा है, घूम रहा है, जो इस वृक्ष के पीछे कहीं पड़ा हुआ है, उस कीड़े को भगवान के संपर्क में आने का उसकी क्या संभावना है? व्हाट इज अ चांस, क्या चांस है, क्या संभावना है कि कीड़ा भगवान के संपर्क में आ सके? लेकिन वही कीड़ा जब किसी फूल के संपर्क में आ जाता है और जब उस फूल की पुष्प मालाएं बनती हैं और वही फूल जब भगवान को चढ़ाया जाता है तो उस फूल के भीतर कीड़ा जब बाहर निकलता है तो वही कीड़ा भगवान का दर्शन कर पाता है, भगवान का स्पर्श कर पाता है। और इसीलिए हम भी जो कीड़े जैसे थे, केवल फूल के समान सुगंधित भक्तों के संपर्क में आके अब भगवान के वक्ष स्थल का दर्शन कर पा रहे हैं। अर्थात हमें चाहिए कि महान भक्तों का संग करें और ऐसे महान विष्णुदूत हमारे जीवन में आकर ऐसे कीट जैसे जीवन से हमारा उद्धार कर इस योग्य बना रहे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा कर सकें। अन्यथा हमारी निजी की कौन सी ऐसी योग्यता है? इसमें वर्णन आ रहा है यहां पर, अथापि मैं दुर्भगस्य विबुधो तम दर्शने भवितव्यम मंगलेन येनात्मा सुप्रसीदति। अजामिल कह रहे हैं अथापि मैं, अरे मैं विचार भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से कार्य किए कि ऐसा महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। विष्णु दूतों के दर्शन हुए, मैंने क्या कार्य किया है? मुझे इस बात का तो स्मरण नहीं आ रहा कि इस जीवन काल में मैंने कुछ किया हो। भवितव्यम मंगलेन येनात्मा में प्रसीदति, अवश्य ही मेरे कुछ विगत भक्ति के कार्यों का ही यह परिणाम होगा कि भगवान ने मुझ पर अपनी अनुकंपा प्रदर्शित की और विष्णु दूतों को मेरे समक्ष भेजा। अर्थात हम सभी भक्ति में और भक्तों के संग के संपर्क में कैसे आए, ये अवश्य ही कुछ विगत भक्ति के कार्यों का परिणाम होगा। येन केन प्रकारेण, जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो उस समय हमारे विगत भक्ति के कार्य उदित होते हैं, उनका संपर्क होता है और फिर हम भक्ति के कार्य आरंभ कर देते हैं। इसलिए हम इस बात को समझ नहीं सकते कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसके कारण आज हम भक्ति में हैं। बस यही विचार करना चाहिए कि ये न कहने प्रकारे ना हम भक्ति में आ गए, ये भगवान की विशेष कृपा है। एक बार एक व्यक्ति रशिया में किताब वितरण कर रहे थे, किताब वितरण कर रहे थे तो अचानक कुछ गुंडे उनको आके मारने लगे। तो पास में एक केजीबी एजेंट घूम रहा था। उस समय की बात है जब यूएसएसआर था, केजीबी एजेंट हमेशा घूमते थे। पता जाता है कि आधा जो यूएसएसआर था जनसंख्या थी और आधा केजीबी एजेंट थे। तो केजीबी एजेंट ने देखा कि किसी को मारा जा रहा है तो उसने विचार किया उसकी रक्षा करनी चाहिए, चुपचाप गया और जो दो चार गुंडे थे उनको झापड़ मार के भगा दिया। उसके बाद बाएं हाथ का खेल था और उसकी रक्षा करके वो तुरंत चुपचाप निकलने लगा, क्योंकि केजीबी एजेंट तो इस प्रकार रस्ते के किसी फाइट्स में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होती। वो जाने लगा चुपचाप तो भक्त उसके पीछे पीछे भागा। अरे अरे सुनिए सर, कहाँ जा रहे हो? मेरी रक्षा की है, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोले नहीं अरे मेरे पास मत आओ भाई, कोई देख लेगा, जाओ जाओ भागो यहाँ से। बोले नहीं नहीं सर, आपने मेरी रक्षा की, आपको मैं कुछ पुरस्कार दूंगा, लीजिए ये किताब लीजिए, भगवद गीता। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे लीजिए लीजिए, हाथ में पकड़ाया, और पकड़ाने के बाद ये नहीं ये भी कहा थोड़ा इसके पैसे भी दे दीजिए आप। जो किताब वितरक है वो छोड़ता नहीं कभी, चाहे उसकी रक्षा भी की जाए, किताब पकड़ा कर फिर उससे पैसे ले लिए। तो तेजी बेजन ने पैसे दे दिए, किताब लेके गया, और जब घर पर वो पढ़ने लगा तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लगा। और वास्तव में क्योंकि उसने भक्त की सेवा की थी, संकीर्तन पर गए हुए भक्त की रक्षा की थी, भगवान ने विचार किया भवितव्य मंगलेन, अब इसका मंगलमय जीवन आरंभ हो गया। तो गीता का ज्ञान उसके हृदय में प्रवेश करने लगा, और सबसे पहले उसने अपने जीवन में वोडका छोड़ दी, और उसके बाद मांसाहार छोड़ दिया। तो अब केजीबी एजेंट का ऐसा होता है कि एक केजीबी एजेंट के पास दूसरे केजीबी एजेंट देखते रहते, तो उसके नीचे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर था उसने देखा कि अपने बॉस के अंदर तो बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है, क्या बात है। तो उसने मां के अधिकारियों को संदेश दिया कि आज सुबह मैं बॉस को मिलने गया, तो जब उनके कमरे में झांक कर देखा तो अपने सोफा के सामने ये एक बुक लेकर बैठे हुए थे, बुक रखा हुआ था, ये घुटना टेक कर बैठे थे, और हाथ में कुछ माला थी, और वो किसी को तो सीक्रेट मैसेज भेज रहे थे, गुप्त रूप से कुछ संदेश भेज रहे थे किसी को, और पता नहीं वो कौन से देश का स्पाइंग कर रहे हैं। उनके दिमाग में तो स्पाइंग की बात चलती है, तो उनको लगा कि ये भी कुछ संदेश भेज रहे हैं, कहीं पर सीक्रेट कोड भेज रहे हैं, और वास्तव में ये केवल बैठकर जप कर रहे थे। तो धीरे धीरे पूरे केजीबी में इस बात फैल गई कि अब ये कुछ बदल गया है, नाम जप करने लगा है। तो हम सभी ने मिलकर विचार किया इसको समाप्त करना चाहिए। तो ये भी समझ गए कि मुझ पर आक्रमण होने वाला है, तुरंत ही मौका तार कर वो रशिया छोड़कर भाग गए, जर्मनी में चले गए, और वहां टेम्पल के प्रेसिडेंट बन गए। एक दिन हरे कृष्ण आंदोलन में प्रवेश कर गए। ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है। श्रील प्रभुपाद के किताबों को ग्रंथों को वितरित करते भक्तों की सेवा में उन्होंने इस प्रकार के पुण्य संचय किए। यहां तक कि अभी रशिया में जो सबसे बड़े भक्त हैं, अभी जो काफी अधिक उत्तरदायित्व उन्होंने लिया है, उनका नाम पहले वैद्यनाथ प्रभु था, अभी हिज होलीनेस भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पीएचडी थे, और जब वो भक्ति में कुछ रुचि लेने लगे, गीता थोड़ा बहुत पढ़ते थे लेकिन अधिक नहीं, तो उस समय एक दिन केजीबी उनको इंट्रोगेशन के लिए ले गई कि ये साइंटिस्ट है, ये गीता वीता क्या पढ़ने लगा है। लेकिन वास्तव में थोड़ा बहुत वो गीता पढ़ते थे लेकिन उतनी रुचि नहीं थी उनकी। तो केजीबी उनको पकड़ के ले गए और उनका इंट्रोगेशन किया, पूछताछ की, और गीता के एक एक अध्याय से वो भयंकर भयंकर प्रश्न पूछने लगे। तो ये विचार करने लगे ये केजीबी है, इनको देखिए गीता कितनी बढ़िया आती है, ये गीता से इतना डरते हैं कि पूरा गीता ये रट कर रख दिया है, तो वास्तव में मुझे कितना गीता पढ़ना चाहिए। ये केजीबी है और गीता के वितरण को रोकने के लिए गीता को इस तरह से निचोड़ कर पढ़ के रखे हैं, और मुझे भक्ति आगे बढ़ना है और मैं गीता नहीं पढ़ रहा हूं। तो इसमें उस दिन से केजीबी से प्रेरणा लेकर उन्होंने गीता पढ़ना आरंभ किया, और आज भी वो केजीबी को अपना पथ प्रदर्शक गुरु मानते हैं कि उनकी कृपा से और उनके उत्साह से ये भी कुछ इस मार्ग में आगे बढ़ने लगे। वैसे ही हरे कृष्ण आंदोलन के ऊपर केस हो गया रशिया में, और उस पर केस हुआ तो जो जज था मेन, जो जज इसमें निर्णय देने वाला था, वो अपने घर पर प्रभुपाद के सारे किताब लेके आके रख दिया, क्योंकि केस में जजमेंट देना था कि ये लोग धर्म का प्रचार करे, ये करे वो करे, तो सारे प्रभुपाद का भागवत से गीता वीता सब उसके ऑफिस में रखा था घर पे। उनका एक जवान पुत्र था, तो पुत्र अपने पिता के ऑफिस में किसी काम से गया, किताब देखा, किताब खोलकर पढ़ने लगा, और पुत्र को ये किताब इतने अच्छे लगे कि वो आकर हरे कृष्ण मंदिर मॉस्को में ज्वाइन कर दिया। तो पिता को मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र ही इनके साथ चला गया है, तो बोले कि इनके विरोध में क्या हम निर्णय दें। तो बोला चलो हरे कृष्ण आंदोलन में बोलो पाएगा। तो हरे कृष्ण आंदोलन को इस प्रकार के अनेक प्रकार से लाभ मिले, केवल भगवान और भक्तों के और प्रभुपाद के ग्रंथों के संपर्क मात्र आने से बहुत कुछ मंगलमय हो जाता है, इस बात का प्रमाण है। ये केवल किताबी ज्ञान नहीं, इसलिए आप कह रहे हैं भवितव्यम मंगलेन
येनात्मा मे प्रसीदति अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचे वृषमीपते वैकुंठनाम ग्रहणं जिह्वा वक्तुम इहार्हति।
इस प्रकार अजामिल कह रहे हैं अन्यथा
मुझ जैसे पापी जीव के लिए कैसे संभव था कि मैं अपने जिह्वा पर
भगवान श्री विष्णु
भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकूं, मैं तो इतना बड़ा पापी जीव था।
ये तो भगवान की विशेष असीम कृपा है मुझ पर।
अन्यथा क्वचाहम कि तब पाप ब्रह्मग्न निरपौत्र क्वच नारायण केती भगवन नाम मंगलम। अरे विचार कीजिए कि मैं कितना जघन्य पापी हूँ, मैं कितना बड़ा वंचक हूँ, और ब्राह्मण के गुरु का पूरी तरह परित्याग कर ब्राह्मण संस्कृति का मैंने पूरी तरह से तिरस्कार किया, उल्लंघन किया। त्वचा हम कि तव पाप ब्रह्मग्न निरपात्र और इतना बड़ा निर्लज पापी त्वचा नारायण त्येती और भगवान श्री नारायण का नाम कहाँ है।
अरे मैं कहाँ हूँ और भगवान का नाम कहाँ है।
भगवान का नाम इतना सर्वोच्च मंगलकारी है
और मैं इतना पापी हूँ।
क्वच नारायण त्येती भगवन नाम मंगलम। मुझ जैसे पापी जीव की जिह्वा पर भगवान श्री विष्णु श्री नारायण का मंगलकारी नाम कैसे प्रकट हो गया।
ये तो अवश्य ही भगवान की असीम अनुकंपा है। वो भगवान के नाम का मूल्यांकन करने लगे कि भगवान का नाम कितना शुद्ध है, कितना कृपालु है,
कि वह पक्षपात नहीं करता कौन पापी है कौन पापी नहीं, सबके चेहरा पर भगवान का नाम प्रकट हो जाता है।
इसलिए भगवान का नाम निरंतर सदैव रखना चाहिए, इसका अवश्य ही हमको लाभ प्राप्त होता है। और वर्णन आता है कि एक बार ऐसे एक पुराणों की कथा है, एक जवान व्यक्ति अपनी प्रेमिका को मिलने जा रहे थे, हाथ में एक फूल था और फूल लेकर जा रहे थे और समुद्र के किनारे वो जा रहे थे, अचानक तूफान आ गई और उस तूफान में समुद्र का पानी ऊपर आ गया और बेचारे समुद्र के पानी के भीतर डूबने लगे। और जब जल से आप्लावित होकर डूबने लगे, अचानक विचार आया, ये मैं पुष्प लेकर जा रहा था अपनी प्रेमिका को देने, अब उससे तो मैं मिल नहीं सकता, जीवन भर मैंने भगवान के लिए कोई कार्य नहीं किया, चलो इस फूल को भगवान को ही अर्पित करता हूं। और उसने फूल लिया और मरते मरते फूल को ऊपर फेंकते हुए कहा, नारायण अर्पित मस्तु, मैं इस फूल को नारायण को अर्पित करता हूं, कृष्णा अर्पित मस्तु। इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो यमदूतों के पास उनको लाया गया। यमराज पूछने लगे, देखो तुमने ऐसे कई पाप किए हैं जिसकी वजह से नरक में भेजने वाले हैं, लेकिन मृत्यु के घड़ी में तुमने एक ऐसा अच्छा कार्य किया कि अब उसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ क्षणों के लिए स्वर्ग के बाहर जो नंदन कानन वन है उसमें थोड़ा समय बिताने के लिए अवसर देंगे, क्योंकि मृत्यु के समय आपने नारायण अर्पित मस्तु इस तरह से कह दिया था, इसलिए भगवान का नाम लिया, भगवान को फूल अर्पित किया, इसलिए वहां पर जाने का अवसर। बोले पहले कहां जाओगे। तो कहेंगे अवश्य पहले मैं वहीं जाऊंगा गार्डन में। तो तुरंत उनके लिए व्यवस्था कर दी। और जैसे वह उस बगीचे में आए तो बगीचे में द्वारपाल था, द्वारपाल से उसने एक तलवार खींच ली और तलवार खींचकर वहां पर उस बाग में जितने फूल थे सभी फूल को काटने लगे, कहने लगे, गोविंद अर्पित मस्तु, कृष्ण अर्पित मस्तु, नारायण अर्पित मस्तु, कृष्ण अर्पित मस्तु, विष्णु नमः, ऐसा ऐसा करके जितने फूल थे सभी को अर्पित करने लगे। विचार किया, एक फूल अर्पित करने पर इतना लाभ मिला तो यहां बाग के सारे फूल अर्पित कर दो तो इस बगीचे से उठकर सीधा भगवत धाम ही पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, कुमनाह सुमनस्वम ही याति यस्य पदाब्जयो सुमनार्पित मात्रेण तं चैतन्यं प्रभुं भजे। कुमनाह सुमनाह दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। भक्ति लाने से पूर्व हम सभी को मना है, अर्थात हमारे मन में पित्सित विचार है और उसको परिवर्तित करके हमको सुमनाह बनना है, मन में सद्विचार लाने हैं, भगवान की भक्ति के विचार लाने हैं। तो ये कैसे संभव है? कुमनाह सुमनस्त्वम ही याति यस्य पदाब्जयोः। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के निकट जाएं तो कुमनाह से सुमन बन सकते हैं। तो प्रश्न उठता है, कुमनाह से सुमनाह कैसे बने? इसके लिए मार्ग क्या है? सुमनोर्पिण मात्रेण। सुमन अर्थात फूल भी, फूल का एक दूसरा नाम सुमन भी है। तो कुमन से सुमन बनना है तो केवल कृष्ण के चरण कमलों में सुमन अर्पित करने मात्र से और नाम का उच्चारण करने मात्र से उस पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। सुमनोर्पित मात्रेण तम चैतन्यं प्रभुं भजे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा हमें प्राप्त हो सकती है यदि हम इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करें। इस प्रकार हमें देखना है कि अजामिल मूल्यांकन कर रहा है, उनके हृदय में अप्रिसिएशन भगवान के नाम के लिए बढ़ रहा है और जो कुछ उसे प्राप्त हुआ अब वो अंतिम स्तर पर आ रहा है और वो है दृढ़ता का, डिटर्मिनेशन, अर्थात जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ उसके आधार पर मैं अपना जीवन परिवर्तित करूंगा और जीवन जीऊंगा। सोहम तथा यतिष्यामि यत चित्ते इन्द्रियाणि मम यथा न भूयो तमसि अंधे तमसि मज्जये। अब मैं अपने जीवन में जितने कामपूर्ण कार्य थे उन सभी का परित्याग कर दूंगा, फिर ऐसे पाप कर्म नहीं करूंगा। अब मैं निर्मल हृदय के साथ भगवत भक्ति के कार्यों में रत हो जाऊंगा, ये मैं दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प करता हूं। अर्थात हमें भी इस स्तर पर आना है, पश्चाताप करना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और इस हरिनाम का मूल्यांकन भी करना है। लेकिन जब तक दृढ़ता के स्तर पर नहीं आते तब तक जीवन सुधर नहीं सकता। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, उस भरी सभा में द्रौपदी देख रही थी कि मेरे सारे पांचों पति इतने शक्तिशाली हैं, एक से बढ़कर एक महादिग्गज महारथी यहां बैठे हुए हैं, ये सभी मेरी रक्षा करेंगे। द्रौपदी के अपने पतियों पर भरपूर विश्वास और श्रद्धा थी, लेकिन दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण किए जा रहा था। द्रौपदी क्रंदन कर रही थी, उसके आर्तनाद को कोई नहीं सुन पा रहा था। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव सभी अपनी दृष्टि नीचे झुकाए बैठे थे। द्रौपदी कौरव राजसभा में वरिष्ठ वैष्णवों की ओर देखने लगी, जैसे भीष्म पितामह भी कुछ नहीं किए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य धृतराष्ट्र विदुर इत्यादि भी कुछ नहीं कर पाए। द्रौपदी को इस बात का विश्वास था कि अवश्य इन वरिष्ठों में कोई हस्ताक्षेप करेगा, मेरी रक्षा करेगा। लेकिन द्रौपदी बारंबार पुकार रही थी, उच्च स्वर में चिल्ला रही थी, उस अबला स्त्री को सुनने वाला उस सभा में कोई नहीं था। अब द्रौपदी की परिस्थिति पूर्ण रूप से निस्सहाय हो गई थी। अब वह विचार कर रही थी कि मैं क्या करूं। द्रौपदी अपने दोनों हाथों से उस साड़ी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन दुशासन के शरीर में तो 10,000 गज का बल था। एक शक्तिहीन अबला युवती भले किस प्रकार ऐसे शक्तिशाली महारथी के शक्ति का अभिप्राय कर सकती है, उसके साथ खेल सकती है। द्रौपदी भरपूर प्रयास कर रही थी अपने साड़ी को रोकने का, लेकिन दुशासन उस साड़ी को खींचे चला जा रहा था। अंधगत्व द्रौपदी इन सभी भौतिक वस्तुओं से अपनी श्रद्धा को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करने का विचार किया और द्रौपदी उच्च स्वर में भगवान का नाम लेने लगी। हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे वासुदेव, हे द्वारकावासिन, इस प्रकार से उच्च स्वर में कृष्ण का नाम पुकारने लगी द्रौपदी। और उस समय वर्णन आता है कि कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। द्रौपदी के उच्च स्वर में जो आर्तनाद थी कृष्ण के हृदय को भेद गई और
भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के आर्तनाद को निरंतर सुनते रहते हैं, उसके साथ आदान प्रदान करते ही हैं। ऐसा कभी समय नहीं आता कि भक्त भगवान को पुकारे और भगवान उसके साथ आदान प्रदान न करे। ये भगवान श्री कृष्ण का वादा है, नमे भक्तः प्रणश्यति। और द्रौपदी चिल्ला रही है निस्सहाय अवस्था में, लेकिन फिर भी द्रौपदी को अपनी शक्ति पर, अपने बल पर भी कुछ श्रद्धा थी। अपने हाथ से भी वो पकड़ी हुई है, साड़ी खींची जा रही है और फिर अपने मुख से, अपने दांतों से उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है। पहले एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर अपने दांत, और दुशासन निरंतर उसका वस्त्र किए जा रहा है। साड़ी खींची चली जा रही है, अब उसका पूरा पट खुलने ही वाला था। ऐसी अवस्था में द्रौपदी समझ गई कि अब केवल श्री भगवान कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। और तब द्रौपदी ने पूर्ण रूपेण अपने स्वयं के निजी बल पर सर विश्वास उठा लिया, दोनों हाथों को ऊपर कर लिया और उच्च स्वर में हे कृष्ण, हे गोविंद, हे वासुदेव, इस प्रकार से उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। और जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस निस्सहाय भाव को देखा, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा कि द्रौपदी पूर्ण रूपेण मुझ पर आश्रित है, मुझ पर श्रद्धा रखी है, मुझसे अपेक्षा कर रही है कि मैं उसकी रक्षा करूं, तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के इस उच्च स्वरी पुकार को सुनकर उनके पट के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान का वस्त्र अवतार होता है। और भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी के वस्त्र के रूप में अवतरित होते हैं, दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र ग्रहण किया जा रहा है, जन सामान्य देख रहे हैं कि ये महान दुर्घटना चल रही है, अब भला क्या होने वाला है। ऐसी अवस्था में केवल वस्त्र वहां बढ़े जा रहा था, वस्त्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, एक पूरा ढेर वस्त्रों का तैयार हो रहा था। और 10,000 गज के बल वाला दुशासन 10 गज की साड़ी नहीं उतार सका। ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, ये भगवान श्री कृष्ण के नाम की शक्ति है कि जब निस्सहाय अवस्था में जब कोई भगवान श्री कृष्ण को पुकारे तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्त के साथ आदान प्रदान करते ही हैं। अर्थात हमें चाहिए कि हम भी भगवान श्री कृष्ण को इसी प्रकार निस्सहाय भावना से पुकारें और तब भगवान अवश्य ही आदान प्रदान करेंगे। अरे जब कोई हमें दबोच ले कोने में और हमें मारने की धमकी दे और कोई पिस्तौल हमारे सर पर रख दे और गोली चलाने की बात करे तो कम क्या हम धीमे से चिल्लाएंगे बचाओ बचाओ मेरे को, ऐसा बोलेंगे? कोई बिल्कुल मारने वाला हो कितने उच्च स्वर में चिल्लाएंगे बचाओ मुझे, रक्षा करो मेरी, तब जाकर तो दूसरे को सुनेंगे, रक्षा करेंगे। उसी प्रकार जब निस्सहाय भाव में जब कृष्ण का नाम लेंगे, भगवान को पुकारेंगे, तब तो भगवान प्रकट होते हैं ना। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और यही एकमात्र समाधान है, हमेशा हर प्रकार के क्लेशों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है। इसलिए महामंत्र के जप को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करें। अंतर्गतवा अजामिल विश्वदूतों से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात हरिद्वार जाते हैं, वहां एक विष्णु के मंदिर में वह पूरी तरह भक्ति में लीन हो जाते हैं। और एक दिन स्वयं विष्णुदूत एक वैकुंठ के विमान में उनके समक्ष प्रकट होते हैं। अजामिल को वैकुंठ के विमान में स्थित करके अजामिल को साक्षात भगवत धाम में प्रवेश करा देते हैं। और वर्णन आता है अंतर्गतवा कि अजामिल इस सोने के वैकुंठ विमान में स्थित होकर विष्णुलोक में प्रवेश किए और सुखदेव को संवर्णन करते हैं। या एकम परमं गुह्यम इतिहासम अघातहम श्रृणुयात् श्रद्धयाद्युक्तो यश्च भक्त्या अनुकीर्तयेत्। ये अत्यंत गोपनीय इतिहास अजामिल का जो श्रवण करता है और जो कीर्तन करता है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? न वैस नरकम याति नेक्षितो यमकिं करई। जो श्रद्धापूर्वक अजामिल के इस प्रसंग की कथा करता है और श्रद्धापूर्वक अजामिल के प्रसंग का श्रवण करता है, नेक्षितो यमकिं करई, आप लोग यमराज को नहीं देख पाओगे। अच्छा समाचार दे रहे हैं ये,
अजामिल को नहीं, अजामिल को जो इस प्रकार से परिस्थिति हुई थी उसके परिणाम से अब हम ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेखिको यम किंग करे, जिसने अजामिल का प्रसर सुना है या सुनाया है वह यम दूतों का दर्शन नहीं करेगा। और यद्यपि यमंगलो मृत्यु विष्णु लोके नहीं होते, और यदि कोई अमंगलकारी मृत्यु भी उसकी हो जाती है लेकिन हर परिस्थिति में चाहे कैसे भी उसकी मृत्यु क्यों न हो विष्णु लोके नहीं होते, ऐसा भक्त भगवान के विष्णु लोक में वैकुंठ लोक में प्रवेश करेगा जहां विष्णुदूत उसकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, सत्कार के साथ उसका वैकुंठ लोक में स्वागत किया जाएगा। अर्थात अजामिल के एक प्रसंग को सुनने और सुनाने का यह लाभ है। तो आप सभी को बधाई देते हैं कि भारी संख्या में आप लोग यहां उपस्थित हुए और शांतिपूर्वक श्रद्धा के साथ तन्मयता के साथ इस कथा में रुचि लिए। तो इस तरह अजामिल के हम प्रसंग से यह शिक्षा प्राप्त करते हैं क्लेश का समाधान क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन टू सफरिंग, हरिनाम। हरिनाम ही समाधान है, हरे कृष्ण महामंत्र ही समाधान है। आप सभी से निवेदन है कि यही हरिनाम आप लीजिए। कैसे मालूम आता है, एक बार एक टैक्सी ड्राइवर और एक व्यावसायिक कथावाचक प्रोफेशनल रिसाइटर दोनों की मृत्यु हुई और दोनों को ऊपर लेके गए। तो जो व्यावसायिक कथावाचक था उसको किसी निकृष्ट जगह पर दे दिया स्थान, और जो टैक्सी ड्राइवर था उसको बिल्कुल अच्छे स्वर्ग के किसी अच्छे कोने में डाल दिया। तो ये कथावाचक कहने लगा, ये क्या, मैं तो निरंतर कथा करता था, मुझे बेकार से जगह दे दिया और एक टैक्सी ड्राइवर था उसको इतना अच्छा जगह दे दिया स्वर्ग में, ऐसा क्यों भाई। तो उसको दूत लोग बताने लगे, देखिए वास्तव में दोनों अपने काम के लिए पैसे लेते थे, तुम व्यवसाय से कथा करते थे और ये टैक्सी चलाता था, दोनों को पैसे लेते थे। लेकिन जब तुम कथा करते थे तो लोग बैठकर सोते थे और जब ये टैक्सी चलाता था लोग पीछे बैठकर घबराकर भगवान का नाम लेते थे। तो तुम्हारा काम था नाम निकलवाना, इसका काम था गाड़ी चलाना, लेकिन ऐसी गाड़ी चलाता था लोग नाम लेते थे इसलिए नाम लेने का पुण्य उसको मिल गया, इसलिए उसको हमने ये स्थान दे दिया। अर्थात भगवान नाम लेने में बड़ी शक्ति है। इसका अर्थ ये नहीं जो अपने हरे कृष्ण के ड्राइवर हैं इससे उत्साह लें और भक्तों से हरिनाम लेने के लिए इस तरह से गाड़ी चलाएं, लेकिन फिर भी कहने वाली बात है कि ये न कहने प्रकार यदि हम नाम लेते हैं और दूसरों के नाम का वर्णन करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं इससे अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। सब बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज पूरे कलकत्ता शहर को पावन कर रही है और हम आप सभी को बधाई देते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के इस अति अद्भुत संकीर्तन आंदोलन में सक्रिय सहभाग आप सभी दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आप सभी से निवेदन है कि ये श्रीमद् भागवत जो कि भगवान का ग्रंथावतार है इसको गंभीरता पूर्वक पढ़े, श्रवण करें, जो चाहे इस श्रीमद् भागवत के सेट को खरीद कर अपने घर पर रखें और प्रतिदिन इसकी सेवा पूजा करें पढ़कर श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण रावत संघ कलकत्ता के सदन से ये श्रीमद् भागवत कथानुक्त कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप सभी आयोजकों के बड़े आभारी हैं, आप सभी के बड़े आभारी हैं कि आप इस प्रकार इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आइए अंतिम हम यहाँ पर अब आरती करेंगे और कल की कथा का विषय होगा किस प्रकार क्लेश को सहन करना है, क्लेश को सहन करने का मार्ग क्या है वह कल और परसों हम चर्चा करेंगे। आठवें स्कंध श्रीमद् भागवत से बलि महाराज और रावण देव का प्रसंग होगा। अब आरती होगी और उसके बाद सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम की जय। गोपनानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उपस्थित सभी भक्तों का हम आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज के चर्चा का विषय है क्लेशों को सहन करना और बलि महाराज के जीवन के उदाहरण से हम कुछ प्रेरणा के स्रोत प्राप्त करेंगे। आज भी इसका में श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग का वर्णन आता है। तो भगवान श्री कृष्ण के अनेक अवतार हैं और इन अवतारों में एक प्रमुख अवतार है वामन देव। भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक युगों में अनेक अनेक कार्यों को संपन्न करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत के आठवें स्कंध में ही गजेंद्र जी अपनी प्रार्थनाओं में भगवान के इन रूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं, न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपो गुण दोष एव वा तथापि लोका जय संभवादय तान काल ना काल न मारणुच्यते। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा। वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के इन रूपों का न जन्म होता है, भौतिक रूप से कोई जन्म नहीं होता और भौतिक दृष्टि से वह कोई कर्म नहीं करते। कर्म की परिभाषा है अपूर्णस्य निजे पूर्वार्थे चेष्टाः इति कर्म। हम कभी अपूर्ण हैं और अपनी अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब हम कोई कार्य करें कोई चेष्टा करें उसको कहते हैं कर्म। हम भूखे हैं, भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो भोजन को प्राप्त करने के लिए और उस भोजन को पकाने के लिए फिर उसको खाने के लिए फिर उसको पचाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, इनकम्प्लीट। अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टाः इति कर्म। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला रचाते हैं वो वास्तव में सर्वगुण संपन्न है, सर्वेश्वरशाली है, तो भगवान के लीलाओं को कर्म नहीं कहा जाता, वह भौतिक प्रकृति से परे हैं। भगवान आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में कुछ कमाकर ले जाने नहीं आते। भगवान आते हैं अपने लीलाओं के माध्यम से हमारे चित्त को आकर्षित करने। तो हम सभी वास्तव में आध्यात्मिक जगत के हैं लेकिन अब भौतिक जगत में फंस गए हैं। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आकर्षित करके वापस आध्यात्मिक जगत ले जाना चाहते हैं, इसलिए इन लीलाओं के माध्यम से वो अनेक कथा के विषय वस्तु उत्पन्न करते हैं, जिन कथाओं का श्रवण कीर्तन करने मात्र से बद्ध जीव का चित्त आकृष्ट हो जाए, बद्ध जीव का चित्त भगवान के चरण कमलों के प्रति उन्मुख हो जाए। इसलिए यहाँ पर वर्णन आता है, न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा। भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं होता, भौतिक जगत में किसी भी व्यक्ति का नाम परिवर्तित होता रहता है। घर पे उसको बबलू बुलाते हैं तो ऑफिस में उसको मिस्टर शर्मा बुलाते होंगे, या चपरासी से उसको साहब बुलाता है। नाम उसके बदलते रहते हैं लेकिन मृत्यु के पश्चात कृमि विट भस्म संगीतम, केवल एक ही संज्ञा होती है, या तो कृमि उसे खा जाते हैं या तो विष्ठा बन जाता है या भस्म हो जाता है, बतलाया जाता है, जलाया जाता है या गिद्धों के द्वारा खाया जाता है। अर्थात इस भौतिक देह के कितने भी नाम या संज्ञाएं क्यों न दे दो, अंततोगत्य मृत्यु के पश्चात केवल यही तीन संज्ञाएं प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, चाहे वो राजा हो या रंक, चाहे चपरासी हो या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। अंततोगत्य कृमि विट भस्म संगीतम। लेकिन भगवान का नाम दिव्य होता है, भौतिक जगत से परे होता है। कोई व्यक्ति भगवान को नाम प्रदान नहीं करता। नाम की परिभाषा क्या है? मनोग्राह्य वस्तुनो व्यवहारार्थे केनापि संकेतितः शब्द इति नाम। कोई भी मनोग्राह्य वस्तु लो, कोई वस्तु जो हम अपने मन और इंद्रियों से पकड़ सकते हैं, उसको इंगित करने के लिए, उसके विषय में वर्णन करने के लिए जब हम उसे कोई शब्द देते हैं तो उसको कहते हैं नाम। तो वास्तव में ये सभी स्थूल तत्व का बना है, पृथ्वी का ही बना हुआ है। ये घड़े भी पृथ्वी का है, ये टेबल भी पृथ्वी का है, ये माइक भी पृथ्वी का है। तो हम सबको पृथ्वी 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 कहे तो आप और पृथ्वी को चालू करो तो समझ में नहीं आएगा किसकी बात कर रहे हैं। हम सभी का देह पंच महाभूत का बना हुआ है। अगर क्लासरूम में 50 लड़के बैठे हैं और सबका केवल नाम पंच महाभूत है तो फिर स्कूल का एडमिशन कैसे होगा, और उसके बाद वो एग्जाम कैसे लिखेंगे, और व्यवहार कैसे चलेगा। और वास्तव में सब कुछ पृथ्वी से ही आई है। आलू टमाटर गोभी और चावल और अनाज और बाकी सब कुछ पृथ्वी से ही आई है। लेकिन कुछ भोजन बनाना है, कुछ खरीदना है, कुछ पकाना है तो हम ये नहीं कह सकते आज पृथ्वी पकाओ, पृथ्वी को उबालो, पृथ्वी को फ्राई करो। अरे व्यवहार कैसे चलेगा? तो व्यवहार चलाने के लिए हम मनोग्राह्य वस्तुओं संकेतिक शब्द कुछ शब्द संकेत कर देते हैं। हाँ भाई, हम सभी मिलकर ये कहते हैं कि इसको हम घड़ी बोलेंगे, इसको माइक कहेंगे, हमने निर्णय लिया है। अब कोई व्यक्ति इसको ग्लास बुलाने लगे तो कोई उसका खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है वो चार लोग मिलकर कहें कि नहीं इसको हम ग्लास पुकारेंगे और इसको हम ट्रक बुलाएंगे, तो कोई कठोर शब्द में उसकी निंदा नहीं कर सकता। तो ये तो हमने सामान्य रूप से आपस में इस बात को मान लिया है कि हम इस वस्तु को ये शब्द से बुलाएंगे, इस वस्तु को इस शब्द से बुलाएंगे। तो ये कोई सनातन नाम नहीं है और ये कोई शाश्वत शब्द नहीं है, लेकिन देश काल के अनुसार वो परिवर्तित होता है। और इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग समाज में भी अलग अलग शब्दों का अर्थ कुछ अलग हो जाता है। जैसे उड़ीसा में छोटे बच्चे को पिला बोलते हैं, और यूपी में जाओ तो कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। तो यूपी में जाकर किसी छोटे से बच्चे को पिल्ला बोलोगे तो उसका पिताजी चिल्लाएगा, मेरे बेटे को तुम पिल्ला कह रहे हो, कुत्ता का बच्चा लगता है क्या? ये शब्द वही है, अर्थ बदल गया। महाराष्ट्र में काका बोलो तो मामा होता है, और तमिल में काका बोलेगा तो कौवा होता है। तो चेन्नई में जाकर किसी को बोलेगा काका हट जाओ यहां से तो गुस्सा आएगा उसको, से जाकर मारेगा, कौवा बोलता है मुझे। तो शब्द वही है, शब्द का अर्थ अलग अलग स्थानों में अलग है। अर्थात ये कोई सनातन शाश्वत नाम नहीं है, ये सब परिवर्तनशील है। लेकिन भगवान का नाम कृष्ण है तो ये कुछ समाज के कुछ लोगों ने मिलकर मतदान देकर निर्णय ने किया कि इस श्यामम त्रिभुवन व्यक्ति को हम कृष्ण बुलाएंगे। और ये नहीं कि अलग अलग समाज में इनका नाम भी अलग अलग होता है। ये सनातन काल से कृष्ण थे, कृष्ण हैं और कृष्ण रहेंगे। अर्थात जो भगवान के नाम है वो सनातन है, शाश्वत है, वो कोई सामान्य जीव के मान्यता प्राप्त नाम नहीं है, वे त्रिगुणातीत है, आनंदघन नाम है। उसी प्रकार वो नाम रूप गुण दोष एववा। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु का इस जगत में गुण और दोष परिवर्तित होता है। कोई पूछेगा कि चावल अच्छा है कि चावल बुरा है, आप कहोगे चावल अच्छा है, पौष्टिक है। चावल को केवल रख दो और 3 दिन टेबल पर पड़े रहने दो, पका हुआ चावल यदि 3 दिन पड़ा रहेगा तो वही चावल विष बन जाएगा। तो भौतिक जगत में कोई भी वस्तु सनातन काल के लिए अपना गुण केवल शाश्वत नहीं रखता है, उसमें परिवर्तन होता है। आज कुछ अच्छा है, आज किसी में गुण है तो कल उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन भगवान सतयुग में भक्तवत्सल थे, त्रेता युग में भी भक्तवत्सल रहेंगे, द्वापर युग में और कलयुग के अंत में भी, जब जीव पूरी तरह इंद्र तृप्ति के गर्त में गिर जाएगी तब भी वह भक्तवत्सल ही रहेंगे। भगवान के जो गुण है वो परिवर्तित नहीं होते, भगवान सच्चिदानंद विग्रह थे, सच्चिदानंद विग्रह ही रहेंगे। तो जीव में और भगवान में ये अंतर है। इसलिए भगवान इस जगत में प्रवेश क्यों करते हैं?
तथापि लोका प्रय संभवाय,
इस जगत के जीवों का उद्धार करने और जीवों को इस भौतिक जगत के भव सागर से पार कर आध्यात्मिक जगत तक पहुंचाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान जब आध्यात्मिक दिव्य जगत से गोलोक वृंदावन धाम से वैकुंठ से इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं उसको हम कहते हैं अवतार। वन टू डिसेंड्स, जो इस भौतिक जगत में जीव के उद्धार हेतु प्रवेश करें। एक बार ऐसे अकबर और बीरबल की कथा है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि अकबर पूछते हैं बीरबल से कि आपके हिंदू सभा में हम देखते हैं कि साहित्य में, इतिहास में, शास्त्र में कि आपके सभी लोगों का उद्धार करने के लिए आपके भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होने की क्या आवश्यकता? वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, अपनी अन्य विविध शक्तियों के माध्यम से वो जीवों को अपने पास खींच सकते हैं। भगवान स्वयं क्यों प्रकट होते हैं? बीरबल ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, कुछ समय दीजिए। अगले दिन अकबर और बीरबल भ्रमण कर रहे थे बगीचे में। बगीचे के बीचों बीच एक तालाब थी, तालाब के बीच में एक नौका चल रही थी और नौका के अंदर अकबर का पोता था और उसके साथ एक सिपाही भी था। अचानक अकबर और बीरबल ने देखा कि अकबर का जो पोता था वो पानी के अंदर गिर गया।